ஜாதாரம் விஷ்வ தத்வானாம் வந்தே சதுகுணலப்தை வந்தே சதுகுணலப்தை வந்தே சதுகுணலப்தை. யஹா ஹம் அகாத்திய கர்மோ கே ஆஸ்ரவ கே காரண தேக் ரஹே தே ஔர் உன்கி சர்ச்சா அபேக்ஷித விஸ்தார் பே கி ஜா சுகி ஹை. कर्म कर्म बहुत बातें हुई कर्मों के संदर्भ में, बहुत विस्तार से चर्चाएं सुनी, विस्तार से देखी हमने. क्या लगता है आपको, ये आठों कर्म बंधन चाहिए, बंधने चाहिए, इन कर्मों का फल हमें मिलना चाहिए? हैं कोई ऐसे जो इस बात के लिए तैयार हो कि हम आठों कर्मों का फल भोगना चाहते हैं? भोगना पड़ता है ये अलग मैटर है, लेकिन चाहता तो कोई नहीं है. हम और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इन कर्मों का फल चाहेगा. आखिर क्यों? सच्चाई है क्योंकि जब इन कर्मों का फल मिलता है ना, तो ऐसे पाप का फल आता है कि व्यक्ति घबराता है. ये कहता है मैंने क्या पाप किए, ये याद करता है अपने पुराने दिनों को, आखिर ऐसे क्या पाप किए. सच्चाई यह है यह जीव पाप को हंसते हंसते करता है, पार्टी करता है, उड़ाता है, मौज मस्ती करता है, मजा आ रहा है करते समय. पाप तो हंसते हंसते करता है, किंतु जब फल भोगने का अवसर आता है तो रोता है. आप सोचो यदि ये काम करते समय ही, यदि ये कर्म करते समय ही सोच ले गए तो फल भोगते समय रोना नहीं पड़े. क्यों रो रहा है, क्यों रोना पड़ रहा है, क्या करो, ऐसे कर्म किए थे, ऐसे कर्म किए थे. हंसता है बिना विचारे काम करता है, विचार नहीं करता है काम करते समय, सोचता नहीं है. थोड़ा बहुत भी यदि विचार बना ले दे तो सही काम किया जा सकता है सही ढंग से. बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जगने हो तो हंसाए. सारा जगत हंसता है, काम अपना बिगड़ जाता है, बिना विचारे काम करता है, सारा जगत मजाक बनाता है. तो पहले विचार कर लेता तो कम से कम ये नौबत तो नहीं आती. इसलिए विचार करो, पाप करते समय विचार करो, हर हंसी के समय विचार करो कि हमारी यह हंसी कहीं गलत तो नहीं है. आप विचार करो, सोचो जरा, नरक में डंडे पड़ेंगे तब क्या होगा, सोचो. दिखाए थे आपको कुछ दृश्य, हमने देखे थे आपने नरक गति के दुखों की चर्चाएं, बहुत सारी तरह की परिस्थितियां बतलाई. आप नजदीकी से इसको देखो तो आपको पता लगे क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह की बातें बतलाई गई है. खोटे कार्य में उनसे नरकों में प्राप्त होने वाले उनके फल, कैसे कैसे खोटे काम किए और उनका फल कितने दिखाए हैं, नौ दिख रहे हैं. और देखो आप, देखा था कल, और देखो ये देखा था, चुगली करता है, पर स्त्री सेवन करता है, छोटे पाप करता है, जिन प्रतिमाओं के ऊपर कुछ भी करता है, मंदिर से चोरी करता है, बाथरूम के अंदर मारता है, ऐसे भी डाल देता है. तो क्या क्या काम नहीं किए हैं बोलो अनाथ हमने, जीवों को मारने के लिए मारते हुए रंज मात्र भी करुणा नहीं आती है, हाथ नहीं कांपता है, भूझता नहीं है. उसके ऊपर प्रहार करते समय मारा जाएगा, सोच जरा, जब नरक में डंडे पड़ेंगे तो क्या होगा, कौन भुगतेगा इनका फल, बताओ कौन भोगेगा. और देखो जरा विचार तो करो, करो विचार इन पापों के संदर्भ में. शहद खाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को मारता पीटता, पशुओं को बांधता हुआ दिखाई दे रहा है, हैं? वन में अग्नि लगा दी है, उल्टा लटकाया जाएगा, बांध दिया जाएगा, तेरे को शहद खा रहा है ना, उल्टा लटका दिया उसको, एक तरफ पाप बतलाया है, दूसरे चित्र में उसी में उसका फल बतलाया है, एक तरफ पाप है दूसरी तरफ उसका फल है, फॉल्ट बने हुए हैं इसके, दिख रहे हैं कुछ आपको? सोचता नहीं है, सोचो जरा, सोचो इन पापों का फल क्या होगा, इनका फल कौन भोगेगा, विचार करो, बोलो। मैं आपसे पूछता हूं, सोचने के लिए कह रहे हैं, क्या सोचें? सबसे बड़ा पाप कौन सा है, बोलो। जितने पाप दिखाए और जितने पापों का फल दिखाया, हाँ, उनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। हिंसा बड़ा पाप नहीं है, चोरी बड़ा पाप नहीं है, मांस भक्षण बड़ा पाप नहीं है, विजय कषायों में उलझे रहना बड़ा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इस पाप की खबर नहीं है। मिथ्यात्व महापाप है, पाप नहीं पाप का बाप है, बाप नहीं बाप का बाप है, दादा है तो। पाप का बाप तो लोभ है, पाप का बाप तो लोभ है, ये बाप का बाप है, ये पाप का दादा है, ये पाप का दादा है। बचो इससे, इस मिथ्यात्व नामक पाप से बचो। कौन सा था? हिंसा झूठ चोरी खुशी व्यसन कोई और? आत्मा की विराधना मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, पाप ही नहीं लगता है, इसमें क्या पाप है? हमने की थी आपसे चर्चा भोजन के पहले वाले सेशन में, जिसमें हमने दर्शन मोहनी के आश्रम के कारण बतलाए थे, वो पाप ही नहीं लगता है, सबसे बड़ा कर्म का बंधन कराने वाला हमें पाप नहीं दिख रहा है। भगवान का अपमान करना ये सबसे बड़ा पाप है, उनकी विराधना करना ये सबसे बड़ा पाप है, अकर्ता को कर्ता कहना ये सबसे बड़ा पाप है, ज्ञायक को ज्ञायक न देख करके कर्ता देखना ये महापाप है, जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करना ये महापाप है, ये पाप नहीं दिख रहा है हमारे, ये उल्टी मान्यता, ये बहुत बड़ा पाप है भाई साहब, ये खोटा है। बचो एक बार, गहराई से विचार करो, चिंतन करो, सोचो समझो, एक बार देखो जरा कि क्या पाप किए हमने आज तक, क्या क्या पाप नहीं किए, ये होंगे कोई बात नहीं, करता है बोलो। अकर्ता को कर्ता देखता है तो इसको लगता है इसने क्या कर दिया, इसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। मैं कहता हूं कभी कभी लोगों से, हमने किसी मिनिस्टर को बुलाया हमारे यहां महावीर जयंती की सभा पर, वाय बुला लेते हम कभी कभी, आपके यहाँ का तो पता नहीं, अमेरिका का तो, इंडिया में तो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, जुलूस निकलते हैं, आयोजन होते हैं बड़े बड़े, हजार दो हजार लोग इकट्ठे होते हैं, बुलाते हैं, वो वोट बैंक के नाम पर वो आ जाते हैं, तो वो माइक पर खड़े होकर के भाषण देते, अपनी अपनी बात बताते हैं, और वो आपके ऊपर और आपके वोट खींचने के लिए आपके दिमाग दिलो दिमाग में विश्वास जागृत करने का प्रयास करते हैं कि सुनो मैं जैन कुल में पैदा भले ही नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं जैन ही हूं, मैं तो आज भी मैं आ रहा था ना रास्ते में, मैं एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो तो महावीर भगवान ने बचा लिया मेरे को, ऐसी बातें करते। महावीर भगवान के ऊपर तो मेरे को बहुत श्रद्धा है, उनकी कृपा है अपने ऊपर, तो तालियां बजती है और भैया बहुत बढ़िया, और देखो महावीर भगवान का भक्त है, भाषण देकर के चला गया, सभा में बैठे हुए 2000 लोगों को खड़ा करो लाइन से, और एक एक व्यक्ति से पूछो, बोलो कि तुम्हारे भगवान की प्रशंसा करके गया कि निंदा, हजार 2000 हर व्यक्ति ये कहेगा इसमें क्या है, प्रशंसा करेगा इसमें क्या है, प्रशंसा करेगा था, इतनी तारीफ करके गया, इतनी तारीफ करके गया, अरे तुम्हारे भगवान की इज्जत लूट ले गया वो, तुम्हें पता है उनकी इमेज ये है इस विश्व में कि अकर्ता है, सारी इज्जत को धूल धूमिल कर दिया उसने यहां आकर के, तुम्हें पता है क्या हुआ है, उनको बेइज्जत कर दिया है तुम्हारे परमात्मा को भगवान को, वो अकर्ता थे उनको कर्ता बना दिया है, ये पाप नहीं दिख रहा है हमारे को, ये भी कोई पाप है, इसमें क्या पाप है, इसमें क्या पाप कर दिया, बड़ा अपराधी कौन कर्णेश भाई, कौन बड़ा अपराधी? बड़ा अपराधी वो है जो अपराधी जैसा दिखे नहीं, हिंसा सबको पाप दिखता है, झूठ सबको पाप दिखता है, चोरी करना सबको पाप दिखता है, लेकिन वो अपराधी ऐसा चोर जो चोर नहीं दिखे वो बड़ा चोर है, आपके बगल में बैठ करके आपसे मीठी मीठी बातें करके आपकी जेब साफ करके ले जाए वो बड़ा चोर है, चक्कू दिखा करके ले जाए वो साधारण है, बड़ा बड़ा कौन, अदृश्य गुंडे कौन,
नहीं दिखाई देने वाले सफेद कुर्ते वाले जितना चल रहा है सारे देश में लूट, वो सब किनके द्वारा चल रही है? सफेद कपड़े वाले डॉक्टर साहब, आप भी सफेद कपड़े वालों में हो? हम तो है ही हॉस्पिटल में ये लूट मच रही है, नेताओं ने जो लूट मचा रखी है, सफेद कपड़े वाले हैं सब नेताओं की ड्रेस होती है। कई बार तो मैं जाता हूँ ना, कहीं कोई पुलिस होती है, कहीं पैरा होता है, कहीं इस तरह का, तो वो सलाम करके मेरे को जाने देता है, लोगों को रोक देता है। हाँ हाँ मैं तो पहनता ही थी कई बार हुआ ऐसा। मैंने देखो आप क्या स्थिति है, ये सब जो लूट हो रही है ये किसमें हो रही है? देश से धोखा खा जाता है। मिथ्यात्व का वेश सुंदर है, क्या नियत खराब है। चोर लुटेरा बदमाश हिंसक हत्यारा, उसका वेश ही खराब है, उसको तो सारी दुनिया पाप कहती है, ये बड़ा पाप है। सोचो जरा इस आत्मा की विराधना, ये मिथ्यात्व आत्मा की विराधना का नाम है। आत्मा फातिमा कहकर के पुकारता है, इसका फल क्या लगेगा? इसके बारे में विचार करना। इतना कहूं घंटों चर्चा कर सकता हूं एक एक स्लाइड के ऊपर, घंटों तक, एक आध घंटे की बात नहीं कह रहा, एक एक पॉइंट के ऊपर महीने महीने चर्चा करूं मैं। ये दर्शन मोहनी से बंधन के कारण ना जिसकी चर्चा की थी, ये हमने भी 15 दिन चलाया था हमारे वहां इस पुत्र की चर्चा, रोजाना चलते हुए 15 दिन चला। बातें ये जिनागम क्या कह रहा है, हमें जिनवाणी का अपमान अपमान नहीं लग रहा है लगते भाई, हमें जिनवाणी का अपमान अपमान नहीं लग रहा है। हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, ये हमारे को कोई गलती नहीं दिख रही है, हमने कितना बड़ा पाप कर दिया। आप करके देखो जरा, ट्रंप के ऊपर जूता फेंक करके देखना पता लगे तुम्हारे को, उसको सामने जवाब दे करके देखना ये होता कौन है, फिर देखो क्या होता है, दिख जाएगा तुम्हारे को। कह सकते हो आप ये भगवान को कह देता है कुछ भी, भगवान होते कौन है, भगवान क्या है, कुछ भी कह देता है, कुछ भी करता है। भगवान ने देख लिया तो क्या बच गए क्या, उनके आधार पर उनके पराधी नहीं क्या, जैसे कि जो करेंगे भगवान भी यार, ये मुनिराज भी क्या करके चले गए, लिख गए हमारी जान को आफत, आलू मत खाना, ये मत खाना, हम भुगत रहे हैं। ये क्यों लिखा आचार्यों ने, लगता है उनकी मम्मी आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी, लिख गए ये सारी बातें। लगता नहीं है हमारे को, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये छिपा हुआ बदमाश है, ये दर्शन मोह जिसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में की है आपके बीच में, ये दर्शन मोह वो दर्शन मोह है जो सबसे ज्यादा कर्म का बंधन कराता है। ये विराधना वो विराधना है जिसके फल में निगोध की प्राप्ति होती है, पाप के फल में नरक और मिथ्यात्व के फल में निगोध। सोचो सोचो, कह दिया यहाँ पॉइंट दे दिया, चार चार प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, सोचो तो सही, सोचो गंभीर दिमाग लगाओ जरा यार, ये आदमी चोरी कर रहा है, ये व्यक्ति सप्त व्यसनों में पारंगत है, कितना बड़ा पापी है। ये सुनो, सप्त व्यसन करते समय उसका भी दिल गवारा नहीं होता, दूसरे लोग भी ये कहते हैं यार ये गलत काम कर रहे हो, छिपके करना चाहता है, बचना चाहता है, अंदर से अंतरात्मा आवाज लगाती है यार ये गलत है यार, कब छोड़ूंगा इसको। बोलो, शराबी व्यक्ति शराब पीते हुए अंतरात्मा कहती है, मांस भक्षण करते हुए व्यभिचार करते हुए अंदर से आवाज उठती है नहीं है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए यार। दुनिया भी कह रही है और खुद का दिल भी कह रहा है नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो महापाप है ये कौन कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए, ये कितना बड़ा पाप है। थोड़ा कहा है, बहुत समझना, मुझे तो पूरा करना है सब्जेक्ट, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं दिखानी है आपको, एक एक की चर्चा करनी है, आगे बढ़े आगे थोड़ा सा विचार करने की बात कही है। इसी से रिलेटेड ये जो बातें कही है ना, जो अभी की जा रही है, अभी तो नई बातें आएगी क्योंकि हर बार नई नई आती है। ये प्रवचन अभी आपको मिलेगा 9:30 बजे यूट्यूब पर, जो सब्सक्राइबर होंगे उनको मैसेज आ जाएगा। न्यू जर्सी में लिया था अभी 8 दिन पहले,
देखो जरा मिथ्यात्व के बारे में और आगे बढ़ो, सोचो विचारो चिंतन करो। क्या सोचे भाई साहब, क्या विचार करें, क्या चिंतन करें, क्या करें दिनेश भाई, क्या चिंतन किया जाए? हाथ में कह दिया सोचो विचारो। हम तो बहुत सोचते, बहुत सोचते। क्या सोचते हो आप? मैंने तो बहुत सोचा फिर भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वो एक मुल्ला नसीरुद्दीन था, जानते हैं आप? बहुत सोचता था वो, हर काम सोच सोच करके करता था। एक दिन घर के बाहर खड़ा होकर के दातुन कर रहा था, बैल आ रहा था उधर से। पहली बार उसने देखा बैल को, ऐसे तीन उसके घूमे हुए, ऐसा लंबा था, सामने से आ रहा था। फिर उसको विचार आया, यार ये कितना सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। दातुन करते करते हाथ ऐसे गया ना, मुझे लग रहा यार मेरा फेस भी ऐसा ही गोल है, ये इसमें फिट हो जाए तो कैसा रहे, इसके जो सीलिंग है इनमें फिट हो जाए तो कैसा रहे। सोच रहा था, सोच रहा था, सोचते सोचते इतनी देर में बैल तो निकल गया, वो थोड़ी ना खड़ा रहता। दूसरे दिन फिर सेम टाइम सेम काम सेम बैल, विचार हुई। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कई दिन निकल गए। एक दिन मन में विचार आया कि यार क्या सोचना है यार, लगा के देखो जो होगा। सामने से बैल आ रहा था, इसने अपने गोल चेहरे को बैल के गोल सींगों में सामने से जाकर के डाल दिया। फिर क्या होना था भाई साहब? क्या हुआ होगा? जो कुछ भी हुआ, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, हड्डियां टूट गई चारों तरफ से, लोग मिलने के लिए आए। यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पूरी घटना सुनाई उसने, ऐसा ऐसा हो गया, बैल था और बैल के सींगों के अंदर मैंने अपनी गर्दन फंसा दी, तो सामने वाला क्या कहेगा? बुद्धि नहीं के करे में थोड़ी बहुत भी, करने से पहले सोचा तो होता, बहुत सोचा था। सोचने सोचने में एक महीना लगा दिया मैंने। आप सोचते हो कि नहीं? सोचते हैं साहब, बहुत सोचते हैं, और जब बहुत सोचते हैं तो फिर हमें ऐसा ही लगता है कि यार ये मंदिर जाकर के तो कुछ हासिल नहीं होगा, दुकान पे ही बैठ लो। क्या लगता है आपको? अरे नहीं भाई, ये विचार करो विराधना का फल क्या होगा, ये विचार किया या नहीं? विचार करने के लिए बिंदु देखो आप, ये जो विराधना हमारे माध्यम से हो रही है, ये जो अपराध हमारे माध्यम से हो रहा है, क्षण क्षण का अपराध, अपराध क्षण भर का और फल लंबे समय का, विचार करना इसके बारे में। एक समय के अपराध को तू अनंत काल तक भोगेगा, अनगिनती काल तक भोगेगा, एक एक समय के अपराध को कोड़ा कोड़ी सागरों तक भोगेगा, कोड़ा कोड़ी सागरों तक। क्या स्थिति होगी? इतने इतने सागरों तक, इतने लंबे काल तक। गलती क्या थी हमारी, गलती क्या थी ये तो बताओ, हम क्या बताएं तुम्हारे को? तुमने अपने स्वरूप की विराधना की, ये सबसे बड़ा पाप है। तुमने आत्मा की विराधना की, तुमने अपने आप की विराधना की, तुमने अपने स्वरूप को नहीं समझा, इससे बड़ा और क्या पाप होगा, हम क्या बताएं इसको? ये पाप नहीं महापाप है, ये अपराध नहीं महा अपराध है। पता नहीं लगता हमारे को, छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं और बड़े लंबे लंबे काल तक उसके फल भोगने पड़ते हैं। छोटी सी गलती की और लंबे समय तक उसका फल भोगना पड़ा। आपको मालूम है अंजना हनुमान जी की मदर सती अंजना, 22 वर्ष तक उनके हस्बैंड ने शक्ल नहीं देखी उनकी, और कब शादी हुई उस समय से, दे फर्स्ट से, पहले दिन से, पहले दिन से शक्ल नहीं देखी उनकी। फिर शादी क्यों की थी आपको मालूम है? घटना क्या घटी आप पूरी घटना नहीं मालूम आपको? जब वो यंग थे, शादी हुई नहीं थी, उसके पहले की घटना, गार्डन में घूमने गए अपने दोस्तों के पास, गार्डन में घूमने गए थे पवन अंजय, पवन पुत्र हनुमान के थे ना, पवन कुमार की बात कर रहा हूं मैं। वे पवन अंजय गार्डन में घूमने के लिए गए, जब वे घूमने के लिए गए तो वहां उन्होंने देखा घूम रहे फिर रहे थे, अचानक उनकी निगाह एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की की सुंदरता देखकर ये ऐसे देखने लग गए, इतने मुग्ध हो गए
कि देखते देखते ही बेहोश हो गए उसी के ख्यालों में, बेहोश होकर के गिर पड़े। हमारा उसको पानी के छीटे दिए, बोले मैं तो इसी से शादी करूंगा। होश आते ही क्या बोले, मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो ये राजकुमार तो थे, वो तो चले गए। उन्होंने भी देखा, लड़कियों ने देखा होगा ये दृश्य, क्या देखता देखता बेहोश हो गया। घर गए, दोस्तों ने सारी बात बतलाई, क्या हो गया पिताजी से। पिताजी से कह दी, मैं तो इसी से शादी करूंगा, मुझे तो इसी से शादी करनी है। बेटा ये अच्छी बात नहीं है, अपन क्या किससे जाकर के कहेंगे, तो वैसे ही राजकुमार है, अच्छे से अच्छे रिश्ते अपने आप आएंगे, चले जी दौड़े चले आएंगे। अपन किससे जाकर के कहें आगे होकर के ये ठीक नहीं है ये बात, नहीं पिताजी कुछ भी हो जाए यार अपन झुकेंगे उनके आगे जाकर के, उसका हाथ मांगने हम जाए आगे से, जो कुछ भी हो मैं तो इसी से शादी कर लेंगे। ठीक है भाई, संदेश भेज दिया, नक्की हो गई बात। कौन चालता कामदेव थे, वज्रंग बली थे, वज्र विष्ण महाराज सैन्य वाले थे, बहुत शक्तिशाली सामर्थ्यशाली और ऐसे सुंदर। पवनंजय नहीं, तो पवनंजय तो उसके पिता थे, कामदेव नहीं थे ये, कामदेव तो हनुमान जी थे ना। तो क्या हुआ, शादी नक्की हो गई, बात नक्की हो गई, लेकिन इनसे तो रहा नहीं गया पवनंजय से, रात को ही चले गए उसके घर पे, अंजना के घर पे चले गए मयूर भाई, और पीछे बालकनी से ऊपर चढ़ गए, ऊपर तक चले गए। हाँ इंडियन मूवी, पीछे के रास्ते से बालकनी तक पहुंच गए ऊपर, और गेट के बाहर खड़े थे, और अंदर जाने की सोचते इससे पहले अंदर कुछ दिखाई दिया दृश्य, और कानों में सुनाई दिए कुछ शब्द, और बाहर ही रुक गए। अंदर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी, रुक गए, कान लगा करके चर्चा को सुना। तो चर्चा में क्या चल रहा था अंदर, वो जो सहेलियां थी वो मजाक बना रही थी, वो अंजना को कह रही थी, अरे ये जिससे तेरी सगाई हुई है ये वही लड़का है ना जो तेरे को देखते ही बेहोश हो गया था, अब तो लगता है जीवन भर होश में नहीं आएगा। आपस में कुछ भी हंसी मजाक खेलना, वो बेचारी मुंह झुका करके शर्मा रही थी कि कुछ जवाब नहीं दे रही थी, जो भी है। ये बात पवनंजय को चुभ गई, ये बात ऐसी चुभ गई क्या, अच्छा मैं चेहरा देख करके बेहोश हो गया तो उसकी मजाक बनाई जा रही है, आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। बोलो शादी हुई तेरे हुए, शक्ल नहीं देखी, शक्ल नहीं देखी उसकी। एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, महीनों निकल गए, वर्षों निकल गए, 22 साल निकल गए, शक्ल नहीं देखी। युद्ध क्षेत्र में गए हुए थे, कई महीनों से गए हुए थे, 6-8 महीने 10 महीने हो गए गए हुए, अचानक याद आई। उन्होंने रात को देखा एक पेड़ के ऊपर एक चकवा और चकवी पक्षी, अपने सुमतिनाथ भगवान है ना पांचवें तीर्थंकर, चिन्ह देखना चिन्ह बने ना कपड़े, सुमतिनाथ भगवान का चिन्ह चकवा एक बर्ड है, वो और उसके फीमेल, तो ये जो दोनों हैं इन पक्षियों के संदर्भ में प्रकृति का ही ऐसा योग है, ऐसा नियम है इस तरह का कि रात्रि का अंधकार होते ही ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और एक ही पेड़ पर चापा पर बैठे हो तो एक दूसरे को ढूंढते रहे लेकिन मिल नहीं पाते, और सुबह होते ही एक दूसरे को देख लेते मिल जाते। रात भर तड़पते हुए देखा उसको तो याद आया कि अरे ये एक दूसरे को तलाश में मिल नहीं पा रहे हैं, कैसी हालत है इनकी, वो बेचारी का क्या हो रहा होगा, 22 साल से मैंने उसको देखा तक नहीं। याद आई युद्ध के बीच में से दिनेश भाई, बीच युद्ध में से विमान लेकर के घर आए, छत पर उतरे, कमरे में गए, रात को उसके साथ में रहे, और साथ में रह करके बोले किसी को बताना मत कि मैं आया था, क्या सोचेंगे, अंगूठी दी उसको अपनी कि कोई बात हो तो फिर कभी देखेंगे, अभी मैं चलता हूं। वापस युद्ध क्षेत्र में चले गए, महीनों बाद में वहां से लौट करके आए, पीछे से इनके गर्भ में हनुमान, अंजना के गर्भ में सास ससुर ने लांछन लगा करके घर से निकाल दिया, बेटा तो युद्ध क्षेत्र में, वो तो इतने समय से है नहीं घर से, तेरे पेट में कितना बच्चा है, घर से निकाल दिया, सास ससुर ने रखा नहीं, पियर चले गई तो माँ बाप ने नहीं रखा, अपने यहां नहीं रखेंगे। देखो आप तद्भव मोक्षगामी बालक जिसके पेट में पल रहा हो उसकी दुर्दशा देखो आप कैसी हो रही है। मुझे तो ये प्रसंग बतलाना है कि 22 वर्ष तक पवन जय ने अंजना को नहीं देखा, गलती किसकी थी, सहेलियों की गलती थी या पवन जय की गलती थी? उसने जो 22 साल तक जो भुगता है वो भुगतना किसका अपराध था, किसकी गलती है बताओ? अपराध अपने आप का, पवन जय की गलती नहीं है, कहानी तो यही कह रही है यार। ये कोई ऐसे कोई करता है क्या, ऐसे कोई करता है क्या? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उसको, बाद में हनुमान को जन्म दिया, बाद में फिर पता लगा, फिर बाद में रखा, जब वो आए वापस तो फिर उसको ढूंढा तलाशा, तो सब बातें हुई, तब वो सब घटना बात की है। बोलो क्या घटना है? प्रथमानुयोग ये कहते हैं, हमारी हिस्ट्री ये कहती है, जैन इतिहास ये कहता है, हमारा कथानुयोग प्रथमानुयोग ये कहता है कि सुनो, पिछले जन्म में इस अंजना ने अपनी जेठानी से जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को 22 मिनट के लिए छिपा दिया था, प्रतिमा को छिपा दिया था, दर्शन नहीं करने दिए, ओनली 22 मिनट, सिर्फ 22 मिनट के लिए। 22 मिनट बाद में कुछ विचार विकल्प आया होगा कुछ, अरे यार परेशान है, 22 मिनट बाद में उसको प्रतिमा मिली, 22 मिनट तक उसको प्रतिमा के दर्शन से वंचित रखा, जिसका फल 22 वर्ष तक पति के दर्शन नहीं हुए, पति ने दर्शन नहीं किए। सोचो जरा, जैसे ये देखा है, इसका फल क्या होगा, इस विराधना का फल क्या होगा, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल क्या होगा, हम जो करते हैं उसका फल किसे भुगतना पड़ेगा, कौन भुगतेगा? ये अपराध किसका है, ये गलती किसकी है, इसमें दोष किसका है? किसी का दोष नहीं है, दोष अपना है भाई साहब, दोष अपना है, हम किसको दोष दें? आपको क्या लगता है मुकुंद भाई, दूसरे का दोष, गलती इनकी है, इनकी आंटी की गलती है कि नहीं, इनकी गलती है, किसकी गलती है बताओ? बाबूजी की गलती है, बच्चों की गलती है, इन्होंने ध्यान नहीं रखा, उसकी गलती है, उसने ऐसा नहीं किया, इसकी गलती है, दूसरों की गलती देखता रहता है, यह गलती दूसरे की नहीं है, तेरी अपने आप की गलती है, दूसरों के ऊपर क्यों उंगली उठाता है, अपने आप को देख। ये जैन दर्शन दूसरों की गलती नहीं बतलाता है, हर हाल में गलती मेरी है, किसी हाल में किसी को नहीं बदलना है, अपने को बदलना है, अपने को सुधारना है, गलती मेरी है, मेरे पूर्व कर्म का उदय है, मेरे द्वारा पूर्व में किए गए पाप हैं, मैं सुधारूंगा, मैं सुधर जाऊंगा, दूसरे को क्यों दोष देता है, वो क्या करे? अच्छा मैं ये कहता हूं, उसने 22 साल तक नहीं देखा, दुष्ट था, नालायक था, ऐसा कोई कहे, उस 22 साल के दौरान, अभी तो हमारे को सबको पता है महापुरुष के पिता से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं हम पवन जय को, लेकिन उस 22 वर्ष के दौरान नगर में क्या बातें चलती होगी, बोलो क्या सोचते होंगे लोग? अरे यार बहुत ही गलत हो रहा है बेचारी के साथ में, बेचारी के साथ में कितने कितना गलत हो रहा है, ये जो कितना प्यार करता था, कहां तो दीवाना था उसके लिए, शादी करने के लिए, और कहां देखो यार, आपको क्या लगता है नगर में बात नहीं फैलती है? शादी हुए साल भर हो गया, शादी हुए 2 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं क्या? 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या बात है? तो बात पता लगती है, ये क्या चक्कर है? और फिर बड़े लोगों की तो वैसे ही निगाह में रहती है सब बात, राजकुमार से राजा महाराजा थे, क्या क्या हालत हुई होगी, लेकिन नहीं भाई, जनवाणी नहीं कह रही, दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना, गलती दूसरे की नहीं देखना, मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है, इसलिए भाई साहब विराजना से बचो, गलती मत करो, हम तो ये कह रहे, जो करेगा उसे भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक कथा आती है इनके यहां हिंदुओं में, भीष्म पितामह के संदर्भ में, अपने शास्त्रों में तो नहीं पढ़ी, वो बाणों की सैया पर पड़े रहे और पूर्व जन्मों का कर्म बतलाते हैं इस तरह का कि वो रथ पर जा रहे थे कहीं, और एक सर्प के ऊपर से रथ निकल गया, वो तड़फड़ाता रहा बेचारा, रथ से उतरे और सांप को उठा करके झाड़ियों में पटक दिया, कांटे वाली झाड़ियां थी, उस सांप का शरीर कांटों कांटों के अंदर वो निकल नहीं सका, पूरे शरीर को छलनी कर दिया कांटों ने, मरण नहीं हो सका, ऐसी हालत थी, ऐसा कर्म बांध लिया कि वो मरते मरते बाणों के तैयार पर पड़े रहे। बोलो लंबे समय तक वो इतने तीर लगे, इतने तीर लगे उनके और डेथ नहीं हुई उनके, पड़े हैं सैया के ऊपर, भुगत रहे हैं उसको, किसके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कल कल बोलचाल की भाषा में ऐसा कहता है मुकुंद भाई, यार हमें भी यार उनकी कर्मी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं, ऐसा कहता है। पिताजी कर्जा लेकर के चले गए, कर्जे कर्जे में डुबा करके चले गए, हमें चुकाना पड़ रहा है, उनकी कर्मी के फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं, ऐसा कहता है। किसी और के बारे में कहता है, दूसरे पर इल्जाम लगाता है, यार वो तो करके चले गए और हमें करना पड़ रहा है, वो तो फैला करके चले गए अब सफाई हमें करनी पड़ रही है, बोलो बच्चों की गलती की सजा तुम्हें लगती है कि नहीं, कितना फैला दिया है सब, गलती इन्होंने की और सफाई हमें करनी पड़ रही है, पोछा हमें लगाना पड़ रहा है, किसकी गलती है? बच्चों की, ये बच्चों की गलती है, सारा दीवार इन्होंने खराब कर दी, अब साफ मुझे करना पड़ रहा है, ये सुन तूने कभी किए होंगे उसको साफ कर रहा है, बच्चों की गलती। पॉइंट समझने की कोशिश करना, ये कर्म सिद्धांत जीवन बदल देगा, ये लाइफ बदल जाएगी हमारी। एक बार यदि हम इन बातों को गहराई से समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अप्लाई करेंगे, अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले जो कर्म होंगे वो अच्छे ही उदयने आएंगे। समझ गए ना हम समझ गए, अब क्या दिक्कत है? एक एक समय बहुत कीमती है, एक एक समय कीमती है, एक एक क्षण की कीमत है, एक एक पर्याय की कीमत है। जैसा बनारसी दास जी ने लिखा ना, एक समय की कमाई को अनंत काल खाए वो, मैं कहता हूं एक समय की चूक में अनंत काल गवाए वो। चूको मत, चूक मत जाना, गलती नहीं हो जाए, भूल नहीं हो जाए, भुगतना पड़ेगा। तो भुगतो तो भुगतो, मैं क्या करूंगा, मैं जिसको जो करना हो सो करो। क्या कहते हैं भाई, कर्मों का फल तो मिलता ही है, सही बात है ना, कर्म का फल तो मिलता ही है, क्या करें। इतनी कर्मों की चर्चा हमने की, निश्चित तौर पर आप लोगों के दिल बैठ गए, फनी क्या करनी चाहिए हमने क्या होगा है? निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं भाई साहब, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। किंतु किंतु क्या कर्म दुखी करता है? बोलो, कर्मों का फल तो मिलता ही है, कर्म का फल तो मिलेगा, कर्म का फल दिए बिना नहीं जाएगा, कर्म का फल तो मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कर्म तुझे दुखी करता है, क्या कर्म तुझे दुखी कर सकता है? बोलो, तो अभी तक कैसे परेशान हो रहे थे, फिर आप लोग भी कह रहे क्यों उतर गए सबके, जब आपका जवाब आ रहा है कि नहीं फिर तो चेहरे उतरने का क्या सवाल है? नहीं नहीं साहब, फिर भी कुछ भी कहो, फल तो मिलता ही है, फल तो भुगतना ही पड़ेगा, हमारे आगे हमारे कर्मों का फल आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये कर्म तेरा, ये कर्म जड़ है और मैं चेतन हूं। कर्मों ने तो अनादिकाल से आज तक बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये मेरा हौसला है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, जीवत्व शक्ति का धनी हूँ, ये क्या बिगाड़ देगा कर्म मेरा? ये नहीं साहब नरक में ले जाएगा मेरे को, धन छीन लेगा मेरे से, लूट लेगा मेरे को, ज्ञानहीन कर देगा मेरा, याददाश्त चली जाएगी मेरी, बोलो, कपड़े रास्ते चले जाएंगे तंग से, बीमार कर देगा, कैंसर कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कितना कुछ कर सकता है कर्म, साधारण थोड़ी ने है, कुछ भी तो कर सकता है सब कर्म। डर लगता है हमारे को भाई साहब, हे भगवान पाप से बचा, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, ऐसा लगता है भगवान क्या करूं। सुन भाई, पाप कर्म का उदय किसी पर भी आवे, तू यदि उस पाप कर्म के उदय के काल में अपने ज्ञायक स्वरूप को देखता है तो पाप कर्म तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होता। पाप कर्म का फल संयोगों पर आएगा, पाप कर्म का फल परिस्थितियों पर आएगा, पाप कर्म परिस्थितियां बदल सकता है, लेकिन मनस्थिति उस काल में कैसी होगी ये कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी वक्त पाप आने देना, क्या करेगा, क्या बिगाड़ देगा, क्या बिगाड़ देगा बोलो मुकुंद भाई? आपके बीमारियां लग जाए बहुत सारी, मेरे लग जाए बहुत सारी, क्या बिगाड़ देगा? मेरा क्या बिगड़ गया? मेरी बीमारी दूसरी है भाई साहब, जिसका इलाज निरंतर चल रहा है, ये बीमारी मेरी नहीं है, मुझे टेंशन नहीं होती, क्या घबराहट का काम है बताओ? माँ के जैसे गड़ी चल रही है, ओ क्या मंदिरों में देखो चित्र लगे रहते हैं, गजकुमार बोले राज वहां की फसल नहीं चल रही है। उनका ससुर जिससे संबंध हो गया था छोड़ करके इन्होंने दीक्षा ले ली, वो थोड़े चले आए, उधर से जंगल से गुजरते हुए देखा ये वही है नाला है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की थी, नहीं छोड़ूंगा इसे। कैसा विचार आ रहा है, क्या करूं क्या करूं, इसको ध्यान में बैठा हुआ है, क्या करूं मैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। रास पास में देखा उसने मिट्टी थी, मिट्टी को उठा करके यहाँ केश रोश किए हुए सर के ऊपर चारों तरफ से मिट्टी लगा दी, घास फूस डाल करके वही आग लगा दी सर पे, खोपड़ी जल रही है, राख हो गई। किसका उदय है, पापकर्म का उदय, किसका किया हुआ है, पेट का कि नहीं, खुद का किया हुआ होगा, खुद का किया हुआ होगा, बिगड़ा कुछ उनका। सुनो, माथे पे तिगड़ी जल रही है, माथे पे तिगड़ी जल रही है, उस ताप में जल रहे हैं और अंदर उपयोग आत्मा के एसी में बैठा हुआ है, आनंद में मग्न है, स्वरूप मग्न है, क्या बिगाड़ लिया उसने, बिगड़ा कुछ उनका। आपको पता है तिगड़ी जलते जलते के काल में दक्षकुमार को केवल ज्ञान हो गया, भगवान वाले पांडवों का क्या बिगाड़ लिया, शत्रुंजय देखो जरा, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांचों पांडव और तीन और दो पांच, पांचों के ऊपर कौरवों का भांजा, कौरव तो मर गए 100 के 100, इन्होंने मेरी दीक्षा और दीक्षा लेने के बाद में ध्यान मग्न खड़े हुए हैं, और क्या किया उन्होंने, उनके भांजे ने आकर के उपसर्ग करने के लिए लोहे के सरिये, उसे लोहे के सरिये, सरिये को तपाया, गर्म किया और गर्म करके उसको घुमा घुमा करके तो गले में पहना दिया, लो हार पहनो तुम, ये लो मुकुट पहनो तुम, ऐसे आग साग वो करके बिल्कुल रेड हो जाए, तो उसको घुमाया उसको लोहे को, आग सारा शरीर जल गया, कानों में पहना दिए, हाथों में पहना दिए, गले में पहना दिए, गर्म गर्म लोहे के आभूषण पहना दिए, सारा शरीर जल करके राख जैसा होने लग गया। हुआ क्या बताओ तो, क्या हुआ, अरे बाप बेचारों का क्या हुआ, ओहो कितना उत्तर, कितना उत्तर, क्या हुआ, तुम्हें संकट दिखाई दे रहा है, संकट किसे कहते हैं, असली संकट क्या होता है जानते हो आप, क्या मुकुन भाई, रमेश भाई, क्या है असली संकट बताओ, माथे पर तिगड़ी जलना, ये गरम गरम लोहे के आभूषण पहना देना, ये बड़ा संकट नहीं है, उपयोग अपने स्वभाव से निकल करके बाहर आ जाना ये बड़ा संकट है। जिनका उपयोग बाहर आ गया नकुल और सहदेव, उन्होंने अपने आप को संकट में डाल दिया और 33 सागर की जेल में चले गए, और जिनका उपयोग बाहर नहीं आया ये 3 केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष में चले गए, सिद्धा लेने चले गए, परमात्मा बन गए, भगवान बन गए। सोचो ये कर्म कितना दुखी कर रहे हैं, ओ हो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते भाई साहब, जब पाप कर्म का उदय आता है तो, जब पाप कर्म का उदय आता है ना भाई साहब, अभी कही थी हमने, सोचो जरा नरक में डंडे पड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो हमने आपको डराने के लिए कहा, लेकिन आपका डर निकाल करके अभी नहीं जाऊंगा तो साल भर डरते रहोगे, तो ये जाते समय तो आपको डर निकालना ही पड़ेगा। क्या पिछले 10 दिन में 5-7-8 दिन में जितनी चर्चाएं हुई है आपके बीच में, इन सारी चर्चाओं में जितना डर लगाओ आज निश्चिंत हो जाना, डरने का काम नहीं है, बहुत बांध लिए थे कर्म, कोई बात नहीं, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, पिछले किए हुए को भूल जाओ। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी ऐसे पाप किए थे, हम बता नहीं सकते हमने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किए हैं, कैसे कैसे पाप किए हैं, हम क्या बताएं आपको, हम कह नहीं सकते क्या होगा, बहुत दुखी, बहुत परेशान, चेहरा मुरझाया हुआ, तो क्या कहते हैं उसको, हम प्राग भाव को याद कर, चार अभाव को याद कर, क्या कह रहे हैं ये अभाव, पर्याय की क्षणभंगुरता को याद करो, वो चले गई पर्याय, पाप करने वाली पर्याय चले गई, मैं पापी नहीं हूं, अरे भूतकाल में किसने पाप नहीं किए, अनादि काल से किस किस ने क्या क्या पाप नहीं किए, अब उन पापों को लेकर के क्यों बैठे रहे, उसको दिमाग पे क्यों सवार रखे, भूल जाओ उसको, ये सब इतने किए थे, सब इतना बड़ा संकट, क्या फर्क पड़ता है, अनादि काल के पाप को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा, एक क्षण मात्र की स्वभाव दृष्टि लंबे समय के पाप को धो देगी, एक समय की स्वभाव दृष्टि, कैसे कैसे पापी फिर जाते हैं, अंजन से किए अकामी, अंजन चोर पार हो गया, विद्युत चोर, अरे यार कहानियां तो ऐसे दिमाग में आती है, सोचो भाई सोचो, विचार करने के लिए कह रहे हैं, कर्म का फल मिलता है, वो चोर आ गया था जम्बू स्वामी, जानते हैं आप, वैरागी प्रवृत्ति के थे, अत्यंत वैराग्य में प्रवृत्ति जम्बू स्वामी की हो, शादी नहीं करना चाहते थे, माता पिता ने जबरदस्ती शादी की, चार चार लड़कियों से, चार चार सुंदर कन्याओं से एक साथ शादी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है, बेटा हमारे कहने से कर ले, मैं दीक्षा ले लूंगा शादी के दूसरे दिन, चल एक काम कर तू ले ले, एक बार कर तो ले, माता पिता को पूरा विश्वास था, ऐसी सुंदर सुंदर चार लड़कियों से शादी करेंगे, रात भर ऐसा समझाएगी, उनके मुंह में ऐसा फंसेगा, सब वैराग्य दीक्षा सब भूल जाएगा, ऐसा विश्वास था उनकी, सुंदर से सुंदर चार कन्याओं से शादी की गई, रूपश्री धनश्री सब चारों से शादी हो गई उनकी, आगे सब रात को बैठे चर्चा चालू हो गई उनकी आपस में, आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगी, इतने में क्या हुआ, एक चोर, सात सौ चोरों का सरदार विद्युत चार उसका नाम था, वो आ गया चोरी करने के लिए, वो चोरी करने के लिए रात को आया तो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, अरे यार अभी तो जग रहे हैं, खड़ा खड़ा इंतजार करता रहा, अभी भी नहीं सोए, अभी भी नहीं सोए, ये कब सोए और मैं कब चोरी करूं, ये कब सोए और कब मैं जाऊं, ये कर क्या रहे हैं आखिर, ये बात क्या चल रही है, उसने कान लगा करके सुनना चालू किया, भाई साहब रात भर उनकी बातें सुनता रहा कान लगा करके, और रात भर उनकी बातें चलती रही, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सुबह उठने के बाद जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली, उनकी चारों पत्नियों ने दीक्षा ली, और वो रात को कान लगा करके सुनने वाले चोर ने दीक्षा ली अपने साथियों के साथ, ऐसा चोर ये क्या हो गया, ये कैसे बदल गया, समय समय का फेर है, चिंता मत करो, परवाह मत करो, चलो आगे बढ़ो, बहुत सारी बातें हैं यहाँ, मैं बीसों उदाहरण दे सकता हूँ, बीसों प्रसंग सुना सकता हूँ, महीने भर ऐसी चर्चा कर सकता हूँ, आप खोजेंगे, आप तलाशेंगे, आप चिंतन करेंगे तो आपको बहुत बातें मिलेगी, खैर फिर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे हाथ में आखिर है क्या, तीन कर्मों की चर्चा चल रही थी ना, आपने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर सर्कल है, ये सर्कल है, भाव कर्म करते हैं तो द्रव्य कर्म बनते हैं ज्ञानावरण आदि, द्रव्य कर्म करते हैं तो नौ कर्म बन जाते हैं शरीर आदि, और नौ कर्म में जुड़ करके वापस भाव कर्म बन जाते हैं, हमारे हाथ में क्या है, ऐसे कहते हैं संसार चक्र, ये चक्र चलता रहता, संसार चक्र है, मैं क्या करूं साहब, द्रव्य कर्म का उदय था तो नौ कर्म मिल गए, मैं क्या करूं साहब, संपत्ति मिली थी किया तो फिर भाव कर्म हो गए, फिर भाव कर्म किए द्रव्य कर्म बन गए, द्रव्य कर्म किए थे तो नौ कर्म मिल गए, नौ कर्म माने सही हो, अब क्या करें बोलो, हमारे हाथ में क्या है मुकुंद भाई, है क्या कुछ आपके हाथ में, है आपके हाथ में, ये आपके हाथ में क्या चीज है आपके हाथ में, यहां यहां पुरुषार्थ कौन सी जगह पे, नौकर्म और भावकर्म के बीच में, तू उससे जुड़ता था, नौकर्म से जुड़ान करता था तो भावकर्म होता था, और यदि नौकर्म के साथ में तेरा डिटैचमेंट हो, उससे दूर हो जाए नौकर्म से तो भाव कर्म होना बंद हो गया, भाव कर्म टूट गया तो द्रव्य कर्म नहीं बनेगा, नौ कर्म नहीं मिलेंगे, ये साइकिल ही तो तोड़नी है, और काम क्या करना है हमारे को, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म की साइकिल तोड़नी है हमारे को, ये साइकिल टूट गई तो काम हो गया, बस तोड़ो इस साइकिल को, कैसे टूटेगी ये साइकिल, क्या करें इसके लिए, अरे भाई जो संयोग मिले अनुकूल मिले हो चाहे प्रतिकूल मिले हो, कोशिश ये करो उससे डिटैचमेंट की, कोशिश ये करो उससे दूर रहने की, कोशिश ये करो उससे अप्रभावित रहने की, कोशिश ये करो संयोग माने परिस्थितियां, परिस्थितियों से अप्रभावित रहने की कोशिश करो, नहीं कर सकते किसके हाथ में बताओ, कौन करे ये कोशिश, ये कोशिश कौन करेगा, खुद को करनी है, उन परिस्थितियों से, परिस्थितियों से प्रभावित मत हो, सामने वाले को गुस्सा करते हुए देख करके क्रोधित मत हो, सामने वाले के द्वारा कुछ बिगाड़ देने पर मत बिगड़ो, मत सोचो, कोशिश करो अपने भावों को संभालो, कर्म का उदय आएगा, नौ कर्म मिले, लेकिन मैं नहीं बिगड़ूंगा, ये संभालना है अपने आप को, आप यदि संभालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते, जीवन बदल जाएगा हमारा, नहीं संभाल सकते हैं अपन, किसी ने प्रशंसा की,
अरे मजा आ गया।
अंदर ही अंदर खुश होता रहता है, बाहर में गर्दन हिलाता है, अंदर में खुश होता है। किसी व्यक्ति ने निंदा की, यहां से उठने के बाद में चार लोगों ने कह दिया पंडित जी प्रवचन में मजा नहीं आया,
गहरा होता है।
और चार लोगों ने कह दिया मजा आ गया, तो खुश हो जाता है, आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है मयूर भाई, नूतन भाई आपकी हाथी बहुत अच्छी है।
क्या
नहीं नहीं गलत कह रहा हूँ क्या बोलो,
क्या बात है,
कितना मजा आता है हमारे को। सुनो भाई, तुम्हारा सुखी होना और दुखी होना इसका रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसका रिमोट किसके पास में है? मेरे सुखी और दुखी होने के लिए रिमोट कंट्रोल आपके पास में है। आप थोड़ी प्रशंसा क्या कर दो मैं खुश हो गया, आप थोड़ी निंदा और आलोचना क्या कर दो मैं दुखी हो गया। रिमोट दूसरे के हाथ में देना है क्या? रिमोट अपने हाथ में रखो। सामने वाला कितनी भी गालियां दे ले मैं प्रभावित नहीं होता, कंट्रोल मेरे पास में है, सामने वाले के पास में नहीं है। सामने वाला कितनी भी प्रशंसा करे, झूठी प्रशंसा करे, मुंह देख करके प्रशंसा करे, हमें चढ़ाने का प्रयास करे चने के झाड़ पर, क्या कितनी भी प्रशंसा करे, लेकिन मेरा रिमोट मेरे पास में है, मैं प्रभावित नहीं होता। नहीं हो सकता है ऐसा, कौन करेगा ये? मुझे करना है ये काम। सुनो भाई साहब, आगे बढ़ता हूँ, देखो कर्मों से ज्यादा ताकत तेरे परिणामों की है। तुझे कर्मों से डर लग रहा था, तेरे परिणामों की ताकत को पहचान। डर लग रहा था हमारे को, बहुत डर लगता था कर्मों से, नॉट डर। द्रव्य कर्म से ज्यादा पावर है तेरे पास में, किसकी? द्रव्य कर्म को कंट्रोल करने वाला कौन है? मेरे परिणाम, परिणामों की ताकत को पहचानो। एक है उत्कर्षण, एक है अपकर्षण, एक है संक्रमण। दस तरह की बातें हैं वैसे तो, बंद सत्ता उदय उदीर्ण उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निरति निकाचित जो जो भी है सारी सब लगा लेना। तो तीन मुख्य है। उत्कर्षण क्या चीज होती है? एरो लगा रखा है ऊपर चढ़ना, उत्कर्षण कहलाता है। अपकर्षण डाउनफॉल, संक्रमण इधर का उधर और उधर का उधर, संक्रमण किसमें? कर्मों में। ये किसकी पावर है? मेरी पावर है। भूतकाल में किए हुए पाप को बदल देता है, वर्तमान बदल जाता है, लास्ट वाक्य देखो क्या है, एक समय का परिणाम भूत वर्तमान भविष्य तीनों प्रभावित। ये तेरे परिणामों की ताकत है, एक समय का परिणाम। मेरे जो भाव है, हमारे जो भाव है ना, इसको कहते हैं परिणाम। परिणाम माने रिजल्ट नहीं है, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा चिंतन, ये एक समय का चिंतन क्या करने में समर्थ है? तीनों काल प्रभावित। देखो वर्तमान के परिणाम का वर्तमान में फल मिलता है, आनंद आता है, मजा आ गया यार, मजा आ गया। किसमें मजा आ गया? वर्तमान परिणामों से। और परिणाम खराब हो तो, मन खराब हो तो मजा नहीं आता है। अरे डोसे खाने में मजा नहीं आया आपको, मन आपका स्थिर नहीं हो तो, लड्डू खाने में मजा नहीं आए। कोई मेरे से कह रहा था आपको डोसे डोसे ज्यादा पसंद है, डोसे ज्यादा बोलते हो। मैंने कहा आप बता दो भाई साहब आपको क्या पसंद है, वो बोल दिया करूंगा अगली बार से। मुझे तो कोई नाम लेना है। डोसे पसंद है नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि डोसे ही पसंद है। आप बार बार खिलाओ, रोज रोज खिलाओ, मैं तैयार हूँ खाने के लिए, ऐसा भी नहीं। मैं तो नेहरू जी के सारे प्रवचन सुनना, वहां तो एवा काड़ो है पूरे प्रवचनों में। हाँ डोसे का नाम नहीं है वहां, एवा काड़ो की चर्चा हुई है बहुत। मेरे ख्याल से 20-25 प्रवचन है नेहरू जी के सब यूट्यूब पे, 25 से भी ज्यादा होंगे, तब मैं आप देख लेना, एवा काड़ो नाम आते ही सब हंसते हैं सामने वाले। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, आपका यदि मन अच्छा नहीं है, आपके यदि भाव अच्छे नहीं है, आपके दिल में यदि कोई तकलीफ है, आपके दिमाग में यदि कोई टेंशन चल रही है, आपके दिमाग में यदि कोई बात चल रही है, तो अच्छे से अच्छा भोजन परोसा जाए अच्छा नहीं लगता। ये क्या हुआ? भोजन में खराबी थी, रोकने वाले में खराबी थी, भोजन पसंद नहीं है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है। ये क्या हुआ? मतलब सुख दुख का संबंध किससे है? इससे नहीं है। आपका एक समय का परिणाम पिछले जन्म में बांधे हुए, पिछले भाव में बांधे हुए, पिछली जिंदगी में बांधे हुए कर्मों को बढ़ा देगा, उसको बढ़ा देता है अभी का परिणाम वर्तमान का। आपका भूतकाल में बांधा हुआ कर्म ये वर्तमान का परिणाम उसको डाउन कर सकता है। महाराज श्रेणी साथ में नरक की बांधी और पहले नरक में आ गए, क्या हुआ ये उत्कर्षण और अपकर्षण। आपका वर्तमान यदि खराब है आपका पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका पुण्य पाप में बदल जाएगा यदि वर्तमान खराब है तो, और वर्तमान अच्छा है तो पूर्व का किया गया पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। ये ताकत है परिणामों की, पहचानना भैया इन परिणामों की ताकत को पहचानना। तो क्या करें, एक बात याद रखो, फल तो परिणामों का लगता है, अतः अपने परिणामों की संभाल करना। फल तो परिणामों का लगता है भाई साहब, फल चोरी का नहीं है, चोरी करने के भाव का है, तो फिर चोरी कर ले साहब, बिना भाव के कर सको तो कर लो। बिना भाव के कैसे करोगे, क्रिया का फल कम है भावों का फल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 99 गुना 100 गुना ज्यादा है। ये एक है तो वो 100 है, ये एक है तो वो 99, ऐसा है, इतना अंतर है क्रिया की तुलना में भावों का। फल तो परिणामों का लगता है। बहुत प्रसिद्ध वाक्य टोडरमल जी का, क्या था हमारे हाथ में, तो टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में, हे जीव तेरा काम तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार करना ही है। बुद्धि पूर्वक क्या काम करें दिनेश भाई, बोलो क्या करें, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार कर, बुद्धि पूर्वक अपना उपयोग तत्व विचार में लगा, बुद्धि पूर्वक अपना दिमाग सब कार्यों में लगा, बुद्धि पूर्वक अपना विचार सत्संग में लगा, ये बुद्धि पूर्वक काम है। फिर तो जो प्रारब्ध के अनुसार जो होगा तो होगा। बात तो ऐसी भी है कि तेरे तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो तेरे को सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा, बात तो ऐसी भी है, लेकिन फिर भी बुद्धि पूर्वक करें क्या, हम उपयोग लगाए कर, तत्व विचार में उपयोग लगाने का प्रयास कर, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करने का प्रयास कर कि फिर साहब मोक्ष फिर छोड़ दे, फिर जो होगा हो जाएगा, फिर तो तत्व निर्णय के बाद में सब काम हो जाएगा। ये है हमारे हाथ में, ये नौकर्म हमारे हाथ में नहीं है, बाल काले से सफेद होना हमारे हाथ में नहीं है, कुर्ता कैसा होगा, घड़ी कैसी होगी, मोबाइल चश्मा कैसा होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे कैसे होंगे और कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो बता दिया ना, संयोग है, नौकर्म है, द्रव्य कर्म के हाथ में है। लेकिन ध्यान रखना द्रव्य कर्म मेरे परिणामों के हाथ में, द्रव्य कर्मों को चाबी कौन भरता है, द्रव्य कर्मों को कंट्रोल कौन करता है, मेरे परिणाम कर्म, फल तो परिणामों का लगता है। ठीक है लक्ष्य भाई, खत्म करें अंतिम वाक्य, अंतिम 3 वाक्य कहकर के पूरा करते हैं अपन बात को। संयोग कर्म के उदय अनुसार मिलते हैं, याद करना, याद करना वाक्य, ये संयोग है कर्म के उदयानुसार मिला, ओहो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं, ये संयोग है, ये पत्नी ऐसी है, ये पलट कर जवाब देती है, ये बिगड़ती है, ये हस्बैंड ऐसे हैं, कैसे हैं, जंगल में छुड़वा दिया, ऐसे तो नहीं है, नहीं ऐसे तो नहीं है, सब तो काय को रोता है, जब सीता नहीं रोई तू काय को रोता है, अरे नहीं साहब कैसे है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी बातें करता है, अरे पंडित जी हमारी हम ही जानते हैं, ये सुनो अब उसको जानना बंद करो, ये संयोग है अपने कर्म के उदयानुसार मिलते हैं, संयोग कर्म के उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं, उदयानुसार नहीं होते सुख दुख, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको सुख दुख कर्म के उदय अनुसार नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूँ पार्श्वनाथ स्वामी के होकर कमट पत्थर बरसाता रहा, पार्श्वनाथ कितने दुखी थे, उदय तो पाप का था, ध्यान करो घबराना मत, उदय पाप का था, पापी नहीं थे, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, लेकिन पाप परिणाम यदि हो तो फिर पापी है, पाप भाव से पापी है, पाप के उदय से पापी नहीं है, उदय तो पूर्व का किया हुआ है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो उदय में हमारी कहां चल रही है, पिछले किए हुए में हमारी कहां चल रही है, आपका उदय है, होगा उदय, कोई बात नहीं, आगे चलो, सुख दुख होंगे हमारे परिणामों के अनुसार, और परिणाम कैसे सुधरेंगे, अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं, परिणाम कैसे सुधारे, ये गंभीर बात है, ज्ञायक भाव की चर्चा करो, अपरिणामी की चर्चा करो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को देखो, परिणामों को संभालने का उपाय परिणामों को देखना नहीं है, परिणामों को संभालने का उपाय अपरिणामी तत्व को दृष्टि में लेना है, अपरिणामी जायस को जिन जिन ने दृष्टि में लिया उनके परिणाम अपने आप सुधर गए, और परिणाम क्या सुधरे, द्रव्य कर्मों से वे सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। हम भी यदि चाहते हैं द्रव्य कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति करना, उपाय क्या है? अपरिणामी की दृष्टि करो, जायस की दृष्टि करो। हम सभी लोग उस जायस स्वभाव की आराधना पूर्वक, उस जायस स्वभाव के अवलंबन पूर्वक अल्प काल में इन समस्त कर्मों से मुक्त होकर परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ। नहीं, आत्मा तो आत्मा के लक्ष्य की बात है, आत्मा परिणामी स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी। चलिए ठीक है, तो